प्रदेश है आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। फेडरल सरकार ने कम उत्सर्जन वाली तकनीकों के लिए पेश की बड़ी फंडिंग की योजना। भारत के 2 कोरोना रोधी टीकों को मिली 96 देशों में स्वीकृति। और विश्व नंबर 2 टेनिस स्टार दानील मेदवेदेव अगले साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन में लेंगे भाग। और अब खबरें विस्तार से। फेडरल सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में कार्बन उत्सर्जन और एकत्रण के लिए $1 बिलियन के तकनीकी फंड की घोषणा की है। इस लो एमिशंस टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन फंड की आधी धनराशि करदाताओं के पैसे से आएगी और बाकी आधी निजी निवेशकों से आएगी। सरकार का कहना है कि ये फंड ऑस्ट्रेलिया के शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया 2050 तक शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने का अपना रास्ता खुद बनाएगा।
Under our plan, Australians do not have to upturn their lifestyles or our economy to reach net zero. We can make our own Australian way. Under our plan, Australia will continue producing and exporting world-class resources, energy, manufactured goods, agricultural products, led by globally competitive businesses.
सरकार की ऐसी उम्मीद है कि वे अगले चुनाव से पहले इस फंड को स्थापित करने का कानून संसद में पास करा लेंगे। ड्रग मामले में सिडनी से भगौड़े मुस्तफा बलूच को 2 हफ्ते की ढूंढ के बाद अब गिरफ्तार कर लिया गया है। 33 वर्षीय मुस्तफा बलूच को आज न्यू साउथ वेल्स से क्वींसलैंड जा रहे एक ट्रक की खबर के आधार पर धर पकड़ा गया। उन पर ऑस्ट्रेलिया में $270 मिलियन की कोकेन की तस्करी के आरोप लगाए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर स्टुअर्ट स्मिथ का कहना है कि ये अब तक की सबसे बड़ी ढूंढ में एक थी जिसमें 4 राज्यों की पुलिस शामिल थी।
So last night at 1 a.m. An individual was removed from inside a vehicle, inside a container on the back of a truck on the Queensland New South Wales border.
विक्टोरिया में आज 71,000 जांचों में से 1,003 स्थानीय रूप से अधिग्रहित नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि राज्य में 15,000 से अधिक सक्रिय कोरोना के मामले हैं और करीब 500 अस्पताल में भर्ती हैं। इसी बीच उन विक्टोरियाई लोगों के लिए जिन्हें पूर्ण टीका मिले 6 महीने हो गए हैं, बूस्टर खुराक इस हफ्ते से उपलब्ध हो जाएंगी। वहीं न्यू साउथ वेल्स में आज 200 से अधिक स्थानीय कोरोना संक्रमण सामने आए हैं। राज्य में आज 3 और मृत्यु दर्ज की गई हैं। मरने वाले लोगों में एक 30 के दशक में और एक 40 के दशक में पुरुष हैं जिन्हें टीका नहीं प्राप्त था। वहीं तीसरे व्यक्ति अपने 80 के दशक में थे और उन्हें टीके की एक खुराक प्राप्त थी। राज्य में 90% 16 साल से अधिक की जनता को टीके की दोनों खुराकें और 94% लोगों को टीके की पहली खुराक मिल चुकी है। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ की डॉक्टर मैरियन गेल का कहना है कि राज्य में ऊंची टीकाकरण दर के बावजूद अब भी एहतियात बरतने की बहुत आवश्यकता है।
While we have really high vaccination rates, we need to remain vigilant and we need to continue to increase our efforts to maintain and further enhance those vaccination coverage rates. And that includes for our 12 to 15 year olds who can access approved vaccines through state-run clinics, their GPs and pharmacies.
क्वींसलैंड व्यवसायी क्लाइव पार्मर राज्य सरकार के टीकाकरण नहीं पाए हुए लोगों को कुछ स्थलों पर जाने से रोक लगाने के प्रस्तावित फैसले पर कानूनी कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा बीते दिन जारी की गई योजना के अनुसार बॉर्डर खुलने के बाद वे लोग जिन्हें पूर्ण कोविड रोधी टीका प्राप्त नहीं है, वे क्लब या पब जैसे स्थानों में शिरकत नहीं कर सकेंगे और अस्पतालों में भी विशेष परिस्थितियों में ही जा सकेंगे। श्री पार्मर ने घोषणा की है कि उनके वकील इस बैन के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुए जाएंगे कि यह रोक असंवैधानिक है। इसी बीच क्वींसलैंड ने 3 नए कोरोना मामले दर्ज किए हैं जिसमें से एक गोल्ड कोस्ट में सामने आया है। फेडरल सरकार अब साउथ कोरिया और जापान के साथ संगरोध मुक्त यात्रा पर विचार कर रही है। हालांकि सरकार अब भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को लेकर बहुत सचेत है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि सरकार सिंगापुर के साथ ऐसे ही एक संधि करने के बाद अब इन दोनों देशों के साथ भी एक यात्रा अनुबंध करने के प्रयास में है। ऑस्ट्रेलियाई जनता इस हफ्ते से सिंगापुर यात्रा कर पाने में सक्षम है। ऑस्ट्रेलिया के कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान के मुखिया का कहना है कि इंडिजिनस समुदायों में टीकाकरण दर प्राथमिकता होने के बावजूद भी राष्ट्रीय दर से पीछे चल रही है। फर्स्ट नेशन समुदायों में 66% पात्र जनता को टीके की पहली खुराक और 55% पात्र जनता को टीके की पूर्ण खुराक प्राप्त है, जबकि गैर इंडिजिनस समुदायों में यह आंकड़ा 81% का है। COVID-19 टास्क फोर्स के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल जॉन फ्रिवन ने NITV से कहा है कि यह फर्क धीरे धीरे कम तो हो रहा है, लेकिन समुदाय के नेताओं को समुदाय को यह समझाने की जरूरत है कि यह टीकाकरण आवश्यक भी है और तुरंत करवाने की जरूरत भी।
COVID doesn't discriminate, but a big differentiator is whether you've been vaccinated or not, and it's best if you have got the double dosing, if you've got the full course done, that's when you get the best protections.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के अध्यक्ष ने कहा है कि वैश्विक तापमान को औद्योगिकरण के पूर्व के स्तर से 1.5 डिग्री अधिक पर रोक पाने की दिशा में अब भी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा का कहना है कि वार्ता के अधिकारी जल्द ही 190 से अधिक देशों की प्रतिबद्धताओं का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित करेंगे। उनका कहना है कि विश्व को इस भरोसे की आवश्यकता है कि COP26 में किए गए वादे निभाए जाएंगे।
We are making progress at COP26, but we still have a mountain to climb over the next few days. And what has been collectively committed to goes some way, but certainly not all the way to keeping 1.5 within reach. The gap in ambition has narrowed.
और अब खबरें भारत से। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि 96 देशों ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड कोरोना रोधी टीकों को मान्यता दे दी है। साथ ही दोनों वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन से इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में भी जगह मिल गई है। भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ भी संपर्क में है ताकि विभिन्न उद्देश्यों के लिए की जाने वाली यात्रा को आसान बनाया जा सके। श्री मांडविया ने कहा कि WHO ने अब तक EUL में 8 वैक्सीनों को शामिल किया है। हमें खुशी है कि इसमें 2 वैक्सीन भारतीय हैं। 96 देशों ने इन दोनों टीकों को मान्यता दी है। इन 96 देशों में कैनेडा, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, UK, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, रूस और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि इन कोविड रोधी टीकों की देश में अब तक 109 करोड़ से अधिक खुराकें बांटी जा चुकी हैं। और अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 54.62 रुपए और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 74 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। रूसी खिलाड़ी दानील मेदवेदेव ने उम्मीद जताई है कि वे इस साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले टीकाकरण नियमों के चलते ये स्पष्ट नहीं था कि श्री मेदवेदेव ऑस्ट्रेलिया आएंगे या नहीं। इस साल की शुरुआत में फाइनल मैच हारने के बाद अब उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वे मेलबर्न में आगामी जनवरी में इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। ये अब भी साफ नहीं हो सका है कि सर्बियाई दिग्गज नोवाक जोकोविक इस आयोजन में हिस्सा लेंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने अब तक यह नहीं बताया है कि उन्हें COVID-19 का टीका मिला है या नहीं। टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी उम्मीद जताई है कि वे उन खिलाड़ियों को जिन्होंने टीका नहीं प्राप्त किया है खेल में सम्मिलित कर सकेंगे, पर विक्टोरियाई सरकार पूर्ण टीकाकरण के अपने नियम पर अडिग है। और अंत में एक नजर कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल अधिकांश रूप से धूप ही धूप छाई रहेगी। यहाँ अधिकतम तापमान 25 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल बारिश की संभावना है। यहाँ अधिकतम तापमान 19 जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल देर शाम बारिश की आशंका है। यहाँ अधिकतम तापमान 18 है जबकि न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देश की राजधानी कैनबरा में कल तेज बारिश की आशंका है। यहां अधिकतम तापमान 21 जबकि न्यूनतम 10 डिग्री रह सकता है। सिडनी में भी कल बारिश हो सकती है। यहां अधिकतम तापमान 21 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ब्रिस्बेन में तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान है। यहां अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल तेज तूफान की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप बने रहने की संभावना है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।